अब इसके बाद आगे देखिए, वला यावश शुहदाओ इजा मादू, और जब गवाहों को बुलाया जाए तो वो इनकार ना करें कि नहीं मैंने नहीं आना, मैं नखरे करता हूँ। जब भी आपके पास कोई नेमत है ना, तो शुक्र करें कि आपके पास नेमत और लोग आपसे फायदा ले रहे हैं। कभी बाकी ऐसा होता है, कोई रात को फोन कर सकता है टाइम जोन चेंज होने की वजह से, आप बिजी हैं, वीकेंड है, आप कहीं भी हैं फैमिली के साथ, कोई आपको कह सकता है। कभी गुस्सा आने लगे ना, तो आप में से अगर किसी के साथ ऐसा कोई मामला हो तो फौरन इस बात को याद करें कि शुक्र है अल्लाह का कोई आज मुझसे पूछ रहा है, मैं इस काबिल हूँ, मेरे अंदर गुण है तो ये आ रहा है, तो अल्लाह ताला कहते हैं ऐसा ना करो। अब देखिए अगला अदब बहुत अहम, हद से ज्यादा अहम, स्पेशली हम सब के मामलात जो हमारे कल्चर के, और वो क्या, वला तसअमो, और देखो सुस्ती ना करो, काहली ना करो, किस बात में, अन तक्तुबूहू, कि इस मामले को लिख लो। हु से मुराद मामला, ये जो चल रही थी डील लेने और देने की, सगीरन और कबीरन, मामला बड़ा हो या छोटा हो, दोनों सूरतों में लिखो, इला अजली ही, एक वक्ते मुकर्रर तक लिखो, लिखना पड़ता है। अब मामले की बात ऊपर लिखन पड़त की हो गई, यहां दोहराई करा दी कि बाज दफा होता क्या कि बड़ी बड़ी डील्स तो हम लोग लिख लेते हैं, छोटी नहीं लिखते। मिसाल है, किसी ने किसी से 10 लाख रुपए लिए, ये तो लिख लिया, वो भी नहीं लिखते लोग, बाद में झगड़ा होता है, भाई कहता मैंने दे दिए थे, बहन कहती आए नहीं, वो कहते उसको कहा था उसको दे दिया, उसको दिया, आप कहते नहीं आप बैंक में दें, बैंक वालों से पूछ लेंगे दिए कि नहीं दिए। ये जो बैंक में आजकल ट्रांजेक्शन है, ये भी तो लिखने की कैफियत ही है ना। होता क्या है कि हम क्या कहते हैं, मिसाल है किसी ने किसी को 10,225 रुपए दिए, हो गया दे देना बाद में, अब 2 साल साल डेढ़ गुजर गया, आपको पता क्या याद रहना है, वो 10,000 से कुछ ऊपर थे, ये कुछ ऊपर जो है ना, ये सगीरा ना कबीरा है। पूरी आना पाई लिखो ताकि बाद में बेचैनी ना, बदमजगी ना। इस पे वो हदीस जो आपको खुलासे में शुरू में सुनाई है कि 3 लोगों की फरियाद अल्लाह नहीं सुनता, जिसमें एक वो है कि जो किसी दूसरे को कोई चीज लेन देन की रखे लेकिन मुद्दत मुकर्रर ना करे, और बहुत बुरा मानते हैं लोग जब आप कहें कि लिख लें इस मामले को। इसमें आप किसी को किराया दे रहे हैं, किराया ले रहे हैं, आप किसी को कमेटी दे रहे हैं, कमेटी ले रहे हैं, यही मामले होते हैं ना औरतों के, किसी को चीज दी ली, किधर है पर्ची, कहते हैं हम बेतबार नहीं, नहीं एतबार है, वरना अल्लाह हमारी दुआएं नहीं सुनेगा। और खास तौर पे जहां दीन के मामले आ जाए, अल्हम्दुलिल्लाह इन बशरी तकाजों के मुताबिक जितना भी इंसान कर सके, मैं हमेशा साथियों के साथ इसी बात पे बात करती हूँ, चाहे कोई को पलट के ना देखे, लेकिन एक एक पैनी की पर्ची आपके पास होनी चाहिए। बस तो अकाउंट्स के डर से लिखते हैं ना कि गवर्नमेंट देखती है पूछती है, आपके अपनी सहूलत कितनी अच्छी है, और कारोबार की जुबान में कहते हैं कि जिसका हिसाब नहीं है वो कारोबारी हमेशा नुकसान में है। मैंने खुद देखा है अपने घरों में कि रात को आके आना पाई जोड़ते थे भाइयों ने, जब नया नया काम पे बैठना शुरू किया अब्बू के साथ, तो फिर रात को आके ना, तो वो रोकट मिलाना कहते हैं, सारे दिन की पर्चियां जो सेल हुई होती है, और उसको लाके, तो भाई होते ना छोटी उम्र होती है, वो आज इतने पैसे ज्यादा हो गए हैं, मतलब पर्चियां पूरी हो गई हैं, पैसे और भी हैं, तो अब्बू हमारे कहा करते थे जिस दिन पैसे तुम्हारे ज्यादा हुए हैं ना, तो समझो कि कम है, क्यों, तुमको एक एंट्री भूले हुए हो, दिमाग में लगाओ किसको दे दिया था और पर्ची नहीं काटी थी, और वाकई याद करेंगे ना तो वो हाँ वो उस वक्त आया था, पर्ची नहीं कटवाई, पैसे ले लिए थे, ये वो पैसे हैं, और कहा डालो अपनी जेब से, कभी कम होते थे कहते थे डालो अपनी जेब से, अपने पैसे हैं, किसी को हिसाब नहीं देना, कोई शराकत नहीं, लेकिन यूं आना पाई करके आमद रफ्त को करके बंद करके खातों में सोते थे कि हिसाब हिसाब होता है, क्यों बाद में बदमस्कियां होती हैं। और देखिए आज हम अपने बैठ के आप सब देखेंगे ना, मेरा लगे कम अज कम पांच पांच आप सबको अपने खानदान के वाकयात याद आ जाएंगे, कहीं आपके मामुओं का अपनी बहनों से कोई चक्कर याद आ जाएगा, कहीं चचाओं का आ जाएगा, खालों, हाँ इसलिए हुआ था क्योंकि लिखा नहीं था। तो सुस्ती ना करो, लिखो, कोई बुरी बात नहीं, मुश्किल बड़ा लगता है लेकिन लिखे। कोई कहता है क्यों लिखे, अल्लाह का हुक्म है, वरना अल्लाह की मदद नहीं आएगी। एक और वजह भी है लिखने की, वाला वो क्या, कल के सबक में बताई थी किसी को, अगर याद है तो, कर्ज दे रहे हैं, आपने लिखा 1 महीने को वापसी हो जाएगी, 1 महीने तक उतना ही कर्जा वापस देने का अजर है सदके का, जो ही वो 1 महीना खत्म होगा उसके बाद है। बड़ी मजे की बात याद आ गई मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस तरह की बहुत डील्स करते रहते हैं अपने पास स्कूल में भी, तो जब मेरा दिल चाहता है या मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा होता है या कहीं जरूरत पड़ती है तो मैं इनके स्कूल को दे देती हूँ, नॉर्वे में हमारा डील चलती है, तो जो हमारे वहां साथी है मैं उन्हें कहती हूँ कि तो कहती कब वापस चाहिए, तो वो कहती मुझे पूरे 1 महीने बाद चाहिए। वो क्यों कि 1 महीने तक तो मुझे इतना कर्ज देने का जरा है, तो उसके बाद मेरा डबल है। दूसरी बात होती है कि 1 महीने बाद आप मुझे पूछे, लिखते हैं हम पेपर पे, इंशाल्लाह अब आपका भी बन रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। वो उस दिन की जो पेशरफ्त हुई आप साथियों की तरफ से, उसके बाद एक मीटिंग की कि जो भी काम अल्लाह ने जब भी कराना है, लेकिन हम इसको एक प्रोजेक्ट के तौर पे बनाते हैं। आजकल नाम सोच रहे हैं, अगर आप भी कुछ अपनी राय देना चाहें इंशाल्लाह ट्यूसडे के प्रोग्राम में इसको हम फाइनल कर देंगे कि एक ऐसा खाता यानी एक डिफरेंट अकाउंट जिसको हम इस नाम से रखें, जैसे लेगद है तो इसका इधर भी होना चाहिए। तो आजकल हम बच्चों की तरह नाम सोचते रहते हैं कि क्या नाम हो जिससे फीलिंग है, तो अगर आप चाहते हैं तो अपनी राय डाल दीजिए कि क्या नाम होना चाहिए। तो बहरहाल किस्सा मुख्तसर क्या होता है कि जब पैसे देते हैं ना, तो मैंने कहती हूँ बस मैंने 1 महीने बाद देने हैं, पेपर पूरा लिख के साइन करके लेन देन चलता रहता है, देते हैं। अच्छा होता क्या है, तो 4 माह गुजर गए, अब मैं नाम उनका लूंगी तो वो भी सुनती हैं बाद में तफसीर, वो भी सुन लेंगी, तो मैं नाम नहीं लेती। तो फिर मैं इनसे पूछती हूँ कि आपने मुझे नहीं पूछा, क्योंकि हम उस पर डेट लिखते हैं जब स्कूल को कोई कर्ज देता है, साल का दे रहा है, 6 माह का, कितना, तो हम फौरन फिर उस डेट में उनको पूछते हैं कि आप हमसे लेना चाहते हैं क्या है। तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपको 1 माह का दिया था, मुझे तो आपकी तरफ से कोई कॉल नहीं। उस दादा हमें पता है आपने नहीं लेना, भाई आपने क्यों नहीं लेना, आप क्यों नहीं मुझसे पूछ रहे, समझ आ रही है आपको ये गेम। यानी दो फायदे होते हैं लिखवाने के, नंबर एक कि मैं थोड़ा मुद्दत लिखा के मैं कहूंगी अभी नहीं चाहिए, रखो रखो कुछ नहीं मसला होता, तो फायदा क्या होगा कि मेरा डबल होता जाएगा फायदा, और दूसरी बात है कि आप मुझसे पूछे, अब आपने नहीं पूछे इसके अंदर आप दूसरों को भी नहीं पूछते, फिर उनको खूब डांट पड़ती है। यानी ये तरबियत के अंदाज होते हैं जो इंसान मोहब्बत में खेलता है अपने एक दूसरे से। लेकिन याद रखिए कि लिखत पढ़त बहुत जरूरी है, जहां आपके पास पेपर वर्क नहीं है आप समझ लें कि आपके पास कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बशरी हद तक जब हमने अपने स्कूल का प्रोजेक्ट किया था, शुरू से लेके एक एक चीज लिखी हुई है, जिस वक्त जो चाहे उसको स्लिप भी हम देते हैं, चाहे वो जाके फाड़ दे उसकी मर्जी है, लेकिन कॉपी है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी होती हैं साथियों को, जो हमारे औरतों वाले मामले वो भी बहुत कुछ होता है, लेकिन रूल यही है कि आना भी आए कोई आपको एक पेंसिल भी दे जाता है तो आप वो भी लिख के रखें कि ये किसी ने स्कूल को दी। इसलिए आपको पता है कि हमने अपने स्कूल में ये रूल बनाया हुआ है, आप में से कोई भी स्टूडेंट है गेस्ट है खुद से कुछ नहीं इधर देके जा सकता, ये पंखा कहाँ से है पता नहीं कुछ उड़ गया, ये घड़ी को तोहफे में दे, वाह कैसे आपके घर में कुछ उड़ जाता है, रिसेप्शन पे दें, किसी ने कुछ देना है रिसेप्शन पे दें, पर्ची दें, अगले दिन आपको स्लिप मिलती है, वो चीज रखनी है नहीं रखनी उसका क्या है, हिसाब किताब नहीं होता तो दीन के काम बिल्कुल डूब जाते हैं, याद रखिए। फिर उसके बाद बरकत भी खत्म हो जाती है, और वो जिसको आप कहते हैं कि खुले खाते और कोई समझ नहीं आती, तो अल्लाह ताला कहते हैं ये तुम्हारा अपना फायदा है, अगर छोटी बात है बड़ी, और उसकी मुद्दत को लिखो, जालिकुम अक्सतु इंदल्लाह, ये अल्लाह के हाँ बड़े इंसाफ वाली बात है, वक्वमुल शहादती, और गवाही के एतबार से ये बहुत सीधा रखती है, क्या चीज के लिखो, देखिए ना भाई भूला तो पर्ची आ गई, बहन भूली तो वो पर्ची आ गई, अब अपने लिखे को कौन झुटलाए। इसीलिए आपको पता है कि हम अपने स्कूल के कामों में जब भी कोई मामला कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम लोग हर चीज की रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, जैसे अब आपका ये स्कूल है, हमें कोई चीज आपकी खराब दिखती है तो हम तस्वीर खींच लेते हैं उसकी, कहीं कोई चीज है उसको रिकॉर्ड कर लिया, वजह कि मैं जो बात मैं आपसे कहूं कि आपने उसको ये कहा उसने ये कहा, आप कहेंगे नहीं मैंने नहीं कहा, तो ठहरिए मैं आपको सुनाती हूँ उसने ये कहा, क्या ये बुरी बात है, ये तो डॉक्यूमेंट है। ये आज के दौर में ये होता है, कभी आप अमेरिका में कोई कॉल सुने तो वो उससे पहले एक रिकॉर्डिंग चलती है कि आपकी कॉल रिकॉर्ड की जा रही है सिक्योरिटी पर्पजेज के लिए या क्वालिटी कॉन्शियस के लिए, हमारे साथी किसी को रिसेप्शन पे कैसे डील करते हैं अगर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं और बाद में सुने तो हमें गलतियां पता चलेंगी कि इन्होंने गेस्ट को क्या किया कैसे किया, ऐसे बड़े वाकयात हुए और होते हैं, तो रिकॉर्ड वो है जो सामने बोलता है। मुझे तो खुद दूसरी दफा वो बात बोलनी अच्छी भी नहीं लगती, और कभी भी आप 100% वो बात दोबारा नहीं बता सकते, जज्बात ही बदल जाते हैं, किसी ने सीधी सीधी बात कर मेरे को आपको पता उसने क्या किया ये किया वो किया। एक दफा ऐसा हुआ हमारे साथी थे तो उन्होंने देखा कि मतलब मैं भी जो भी चीज होती है उनको रैकेट के साथ दिखाती हूँ, तो एक मीटिंग इन किसी के साथ थी तो मैंने कहा मेरा इशू ही नहीं आप बैठे आप करें और फिर उसके बाद ये होगा। खैर ये दो साथी थे गए अंदर, मीटिंग इन्होंने की किसी से, उसके बाद आए और बड़े खुश, उस्ताद हमने मीटिंग की है ये वो बस बस कुछ नहीं ये वो करके, और कहती हमने रिकॉर्ड की है अपनी मीटिंग, मैंने कहा बैठो मेरे साथ ही सुनो, फिर जो उसके बाद हुआ वो मैं आपको नहीं बता सकती। यानी हम जब बोल रहे होते हैं हमें खुद नहीं पता चलता, और मैंने कहा अल्लाह आपको जजा दे कि आपने ये मीटिंग रिकॉर्ड कर ली है, वरना मैं उस बंदे के बारे में बदगुमान हो चुकी होती है आपकी रिपोर्ट से जो आपने मुझे आके उसके बारे में खबर दी है, लेकिन बताइए आपने किया क्या। कहती नहीं, अब यहाँ सुन के तो हमें भी बुरा ही लग रहा है, लेकिन जब हम उनसे बात कर रहे थे तो हमें नहीं पता चला। और हकीकत है, बहुत सीखता है बंदा अपनी बातों से। मैं अब बोल रही हूँ, आपको भी नहीं पता चलेगा, मुझे भी नहीं। बाद में मैं अपनी बातें सुनती हूँ, मैं 10 चीज़ें अपनी गलतियाँ निकालूंगी। यानी जब मैंने फर्स्ट टाइम एडिटिंग सीखी और की, मैंने खुद सीखी फिर सिखाई, जो इस वक्त माशाल्लाह सैकड़ों साथी कर रहे हैं अल्लाह ताला की तौफीक से। यकीन करें, 45 मिनट का लेक्चर जो था, जब मैंने खुद उसको अपना एडिट किया, मैंने सिर्फ 15 मिनट का कर दिया, आधा घंटा मैंने निकाल दिया। क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, आपको भी नहीं पता चलेगा। लोग कहते हैं ठीक है, ठीक होता है, लेकिन जुमले उसका ये ऊपर नीचे, तो रिकॉर्डर तो हम सबके साथ लगे हुए हैं। तो अल्लाह सुब्हान तआला यही बात इधर कहते हैं कि देखो, जालिकु मकसद इंदल्लाहि व अक्वमुल शहादा, जिंदगी में रिकॉर्ड कीपिंग को असूल बनाओ, वतनअल्ला तरताबू, और ये ज्यादा करीब है कि शक में नहीं पड़ो। अब यहाँ माली मामला की बात है, कैंटीन का खाता कहीं चल रहा है, हाँ हाँ देना दे दिया, लेना ले लिया, दे देगा, कर देगा, ले लेगा। वो कापियां रखे, वो कापी किधर की, बात कापी नहीं मिली, वो उसमें तो पकौड़े डाल के लोगों को दे दिए। अब क्या हो रहा है, वो कोई नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होता, ज्यादा कर देंगे। और ये हमारा औरतों का कल्चर है, चलता है तो। लेकिन ये कि ये नहीं होना चाहिए, बुरा मानते हैं लोग। अगर आप कहें ठहरे हम लिख लें, तो अल्लाह तो कहता है कि शक से बच जाओगे। अब यहाँ टॉपिक पूरा हुआ, किसका, वो लेन देन जिसमें चीज उधार में थी, कभी दी कभी नहीं दी। और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है। अब आप खवातीन हैं, आपका इतना बिजनेस से ताल्लुक नहीं, वरना 4 मुख्तलिफ किस्म के मामले हदीस की रोशनी में आते हैं कारोबार के, वो मैं यहाँ नहीं करूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो कहीं आपको बाद में अलग से बता सकती हूँ। लेकिन जहां माल दिया जा रहा है, चीज नहीं दी जा रही, पहली सूरत कभी कभी ये होती है कि चीज भी दी तो माल भी दिया, चीज दी पैसे लिए। दूसरी चीज है कि पैसे दे दिए भी चीज नहीं मिली। तीसरी चीज उसका ऑपोजिट है, ना चीज पास है ना पैसे पास है। और चौथी, यानी 4 फॉर्म्स हैं, चीज पास, चीज भी दे दी पैसे भी ले लिए। दूसरी चीज कि पैसे दे दिए भी चीज नहीं ली, डिलीवरी नहीं मिली। और इसी को चारों को घुमाएंगे ना, तो 4 फॉर्म्स बनती हैं। हमने इसमें से अभी कौन सी देखी, नंबर एक वो देखी जो कर्ज का मामला था, और दूसरा बिजनेस में कि जब आप पैसे देते हैं, ऑर्डर प्लेस किया भी चीज नहीं आई, या दोनों में कोई अनपेंडिंग था। अब दूसरा केस क्या है, इल्ला अन तकून तिजारतन हाजिरतन, यहां पे रुकेंगे आप। मगर ये के हो तिजारत हाथों हाथ, कैश का मामला है, आप सेम्सबरी गए, आपने चीज दी, पैसे लिए, चीज दे के आ गए, खत्म, नो प्रॉब्लम। गिव एंड टेक का मामला था, और यहाँ तो वैसे ही आप देखिए कि वो काउंटर पे जाके जो पर्ची बनती है, वो खुद ब खुद एक डॉक्यूमेंटेशन होती है। कभी सेम्सबरी वालों ने आपको ऐसे जाने दिया, चलो जाओ पैसे दे के जाओ। आप कभी जाके कोई चीज प्रोडक्ट खोलें और उसका वो बारकोड ना चले ना, तो वो नहीं बेचते, क्या कहते हैं हमें नहीं लेना। अब देखिए, इन लोगों ने हमारे इस्लाम से ये चीजें ले ली। आप अपने मुल्कों के स्टोर में जाए, किसी चीज पे कीमत ही नहीं लिखी, काउंटर पे जाके पता चलेगा लिखी हुई है कि नहीं लिखी हुई। और आप इधर वेस्टर्न काउंटर्स पे देखें, चीज की कीमत नहीं, आप बेच ही नहीं सकते। वजह क्या है, सिर्फ वो कीमत नहीं दिखती आपको, उनकी लंबा खाता नहीं पता, फर्क किधर है। यानी उनकी अंदर इन्वेंट्री चल रही होती है, इधर उनका दूध का एक डब्बा बिका, आपको पैसे, उधर उनके वहां इन्वेंट्री में जाके कट जाता है कि हमारे स्टॉक के इतने डब्बों में से कट गया। एक वहां क्लिक होता है ना, वो पूरे सिस्टम में जाता है। आप इस मार्केटिंग को पढ़ के देखें, इसीलिए अब आप पूछें कि आपके पास कितने दूध के डब्बे, 18 अंदर गिन के आती हूँ, तो यहाँ की बात नहीं कर रही, कहीं की भी होगी। अच्छा जी, आपके यहाँ पास कितनी बुक्स हैं, सजा मैं भी गिन के आती हूँ। फिर बाद में बताया वो गिनी थी, वो नीचे के काउंटर से नहीं गिनी गई, वो अंदर थी, वो किसी भाई कापी में से दिखाइए। आप कस्टमर्स को खड़ा करके आप स्टोरेज में जाएंगे उनको गिनने, पता चला वो स्टोरेज किसने उधर से उठा के कहीं और रख दी। तो ये खाते लिखना पढ़ना, ये असल चीज है। आज का पूरा सबक आपको मुझे इस चीज पे माइल करता है कि आप लिखने की आदत डालें, ताकि आपको गलती ना लगे और आपका काम सारा के सारा ठीक हो जाए। तो कहा कि जब तुम किसी से डायरेक्ट मामला करते हो, फिर ना लिखो ना गवाह बनाओ, कोई बात नहीं, चीज के बदले में आपके पास चीज आ गई, पैसे के बदले में चीज आ गई, दोनों ठीक है। कफलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्ला तक्तुबूहा, आप कोई गुनाह नहीं है कि तुम इसको ना लिखो। हाँ वह अशहीदु इज़ा तबाया तुम, हाँ गवाह बना लो जब तुम लेन देन करो। वला युदार कातिबुन वला शहीदुन, और न जरर पहुंचाई जाए कातिब को और ना ही गवाह को। क्या मतलब है कि जब भी ये मामला होगा, हाजिर का है, ना लिखो, कुछ हर्ज नहीं है, लेकिन मुमकिन हो तो गवाह फिर भी बना लो। वरना क्या होगा, बाद में कहेंगे जी कि ये हमसे तो ली नहीं। आप देखिए कि कोई चीज रिटर्न करनी हो, यहाँ का तो मुझे पता नहीं, लेकिन अमेरिका का मैंने सुना है कि 3 माह तक भी चीजें वापस हो जाती हैं, यूज चीजें भी वापस हो जाती हैं। शर्त एक है, कि आपके पास स्लिप हो, ये स्लिप की बात है, कि सबूत दिखा दो कि तुमने हमसे कब ली थी तो हम तुम्हें इसको वापस कर देंगे। अब यहाँ कातिब और शहीद को नुकसान ना देने की बात है, वो क्यों? अमूमन देखिए कि ऐसे मौक़ों पे थ्रेट किया जाता है, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ गवाहों की तो जो शामत आती है, जब वो किसी कत्ल के मुकदमे में गवाही दे दें या किसी और मामले में, तो बड़े लोग उनको सताते हैं, तो कहा नहीं ऐसा ना करो, तुम उनको तकलीफ ना दो। वइन तफलू फइन्नहू फुसूकुम बिकुम, अगर तुम ऐसा करोगे तो ये गुनाह का इर्तिकाब होगा। यानी किसी ने देखा कि गाड़ी दूसरे ने टक्कर मारी और एक बंदा नीचे आ गया, राह चलता एक देख रहा था, पुलिस आ गई, कोई पूछता भी तुमने देखा, तो आप खड़े होकर कहते हैं हाँ मैंने देखा कि इस गाड़ी वाले का कसूर है। अब तो कैमरों से वो काम ले लिया जाता है ना। अब वो बंदे ने तो गवाही दे दी, लेकिन डर क्या रहा है कि हाय ये गाड़ी वाले ने बाद में अब मुझे थ्रेट करना है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, इस पे तुम छुपाओ नहीं ना उनको तकलीफ दो। अगर तुमने गवाही को छुपाया, इस पे बहुत ज्यादा हदीसें हैं, गवाही को छुपाना बहुत बड़ा गुनाह है। हम किसी को दिल से मान रहे होते हैं कि ये सच्चा है, लेकिन हम कहते नहीं कौन मैं इसकी खातिर बुरा बनूं। खानदानों में हम ऐसी बहुत सारी सियासतें करते हैं, हमें पता है बहू सच्ची है, लेकिन सास के मुंह पे मुंह वहां करते रहते हैं, हाँ 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 ठीक। बाद में सास उठ के जाती है, बहू उसके बहू को कहते हैं फिक्र ना करो, मैं पता है तुम्हारे साथ जुल्म हो रहा है, झूठ है। हक को हक कहिए, किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे नरम आवाज से कहें, तरीके से बात करें। कोई सास ही आपको किस्सा सुना रही है तो मैं क्या बताऊं ये कैसी है, ये मेरी ऐसी है बहू, तब कह दें कि जरा रुकिए प्लीज क्या हुआ ऐसे, यानी उसके मुंह पे उसको कह दीजिए जो बात आपने उसके पीछे से कहनी है। वत्तकुल्लाह, और डर जाओ अल्लाह से, वयुअल्लिमुकुमुल्लाह, और तुम्हें अल्लाह सिखाता है, वल्लाहु बिकुल्लि शयइन अलीम, और अल्लाह हर बात का इल्म रखने वाला है। ये थी आयते दैन, कितनी लंबी आयत है, और आप देखिए इस पूरी आयत में एक दफा भी नमाज रोजे हज जकात का जिक्र नहीं हुआ। पूरी की पूरी आयत इंसानी मामलात, माली मामलात, लेन देन की बातें, माशरती जिंदगी, बाहमी हुस्नो सलूक और तआवुन का नाम है। कभी आप देते हैं, कभी आप लेते हैं, कभी कर्ज हसना देते हैं, कभी लेते हैं, तिजारत करते हैं, खरीदते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन इन मामलात को असूलों के साथ करो, तरीके से करो। ये सारी शरायत आप देखिए माने तो कभी हमारे खानदानों में और हमारे कारोबारों में बदमजगी हो। हमारे खानदान में एक बात मारूफ है, आपने भी लोगों में सुनी होगी, कि जिसको तुमने छोड़ना है उसके साथ कारोबार कर लो, सुनी भी है? सगे भाइयों में फीक पड़ जाती है जब वो शराकत पे कारोबार शुरू करते हैं, बहनों ही और नंदोई मिलके काम शुरू किया, बाद में पता चला ऐसी फीक पड़ी कि कई साल तक आपस में मिले जुले ही नहीं। उसकी वजह यह है, जब तरीके से काम करेंगे तो आप देखेंगे कुछ नहीं होगा। अब यहाँ एक टॉपिक क्या पूरा हुआ, सबसे पहले क्या था, सदका, कोई देता नहीं, लोग नहीं देते, सूद लेना कोई नहीं, कर्ज की बातें सुन ली। अब सवाल पैदा होता है, सदका आप देता कोई नहीं, सूद आपने लेना कोई नहीं, कर्ज कोई आपको देता नहीं, एतबारी नहीं आप पे, अब क्या करें? आखिरी मुमकिना सूरत जायज कामों में वो क्या है कि जब तुम्हें अब कोई कर्ज भी नहीं देता, मैं कहती हूं कि आप मुझे 500 पाउंड कर्ज दे दें, आप कहते हैं आप कौन, हम तो आपको नहीं जानते, आप पता नहीं देंगी कि नहीं देंगी, तो मैं आपको कहती हूँ कि अच्छा आप ये मेरा सेल फोन रख लें, इसको अपने पास रख लीजिए और मुझे 500 पाउंड दे दें, मैं अपनी जरूरत पूरी कर लूँ, इस डेट को इस दिन को मैं आपको पैसे दे जाऊंगी, मेरा फोन वापस कर दें। इसको अरबी जुबान में रहन कहते हैं, रहन बिल मकबूजा, इंग्लिश में इसको मॉर्गेज कहते हैं, घर के कागज आपने रखे बैंक में और उनसे लोन ले लिया, तो अब ये आखिरी फॉर्म है, आइए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। वइन कुंतुम अला सफरिन, और अगर तुम सफर पर हो, वलम तजीदु कातिबन, और कोई लिखने वाला भी नहीं पा रहे, यानी बिल्कुल अचानक तुम्हें पैसों की जरूरत पड़ गई, कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन करने का मौका नहीं आया, क्या करो? फरीहान मकबूदतुन, तो कोई चीज कर्ज देने वाले के कब्जे में दे दो। बात समझ आ गई? कोई चीज लेके दे दो। सफर की बात जहां की गई, हालांकि रहन सफर में भी जायज है, हजर में भी जायज है, लेकिन अमूमन इसकी जरूरत सफर में पड़ती है। क्यों? आप किसी दूसरे मुल्क गए हुए थे, अब वहां आप जेब कट गई आपकी, पैसों की जरूरत पड़ गई, अब आप अपने घर में 10 लोगों को जानते हैं लेकिन उस मुल्क में आपको कोई नहीं जानता, तो फिर आप क्या कहेंगे कि आप मेरी ये चीज रख लो फिर मैं दूंगा। लेकिन आम तौर पे तो लोग एक दूसरे को जानते हैं, और ये दोनों जायज है, हदीस में हजर में भी रहन का सबूत है। आपको पता है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो उस वक्त आपकी जिरह एक यहूदी के पास रहन में रखी हुई थी। चंद किलो जौ के इवज रहन में रखवाई गई थी कि इतनी भूख का हाल था उस वक्त। तो जाहिर से कोई हर्ज की बात नहीं है। अब क्या हुआ, चीज आपने उसको दे दी, ले ली, अब उसका मामला समझ लीजिए, फाइन। अमीनाबाद कुंबादा। फिर अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर एतबार करे, यानी एतबार करके उसको चीज दी ना, तो फल यद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु, तो जिसका एतबार किया गया है उसको चाहिए कि वो अमानत को ठीक ठीक अदा करे। ये नहीं कि आपने सेलफोन ले लिया मुझसे 500 पाउंड के बदले में, और जब कल मैं 500 पाउंड देने आई तो आप कहते नहीं मुझे सेल नहीं देना वापस, वो तो 1,000 का था। और फिर अमानत में सिर्फ यही नहीं कि इसको वापस करना है, फिर आप इसको मिसयूज नहीं करेंगे, आप इसको यूज नहीं करें। अभी आपको कुछ इसके रूल्स लिखाती हूँ कि जब कोई चीज वैसे ही कहता है रख लो मेरी, तो क्या हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? ये चीज आ रही है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि फिर उसकी अमानत का हक अदा करो, ये नहीं कि अब उसको तो मिसयूज कर दो। वलयत्तकिल्लाह रब्बहु, और चाहिए कि अपने परवरदिगार का तकवा इख्तियार करे जो उसका रब है। वला तक्तुमु शहादा, और ना गवाही को छुपाओ। वमन यक्तुम खफा इन्नहु आसिमुन कल्बुहु, और जो इसको छुपाएगा उसका दिल गुनाहगार होगा। वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम, और जो भी तुम करते हो अल्लाह को इसका खूब पता है। ये है, इसको आयते रहन कहते हैं। अब मैं आपको खुलासा इसका बाद में लिखा देती हूँ कि रहन क्या है, कि चीज आप अपने पास रख लेते हैं और पैसे अगले को दे देते हैं, ये अमानत होती है। पहली बात है कि किसी ने अपनी कोई चीज आपके पास रखवा के आपको पैसे या कुछ दिया भी, तो वो अमानत है। जो चीज होती है ना उसको मुरतहन कहते हैं। यही लफ्ज रहन लिखिए राहानून, तो उससे पहले कुछ और बाद में लगा ले, मुरतहन। मुरतहन वो चीज जो रहन में रखी, यानी इस सूरत में मेरा सेलफोन मुरतहन है, ठीक है। अब इसको कोई इस्तेमाल कर सकता है, खुद कर सकता है अगर उसको इजाजत है, लेकिन आगे उसको किराए पे दे के या उससे पैसे नहीं कमा सकता। मसलन किसी का घर था, किसी ने घर के पेपर दे दिए दूसरे को और कहा कि मुझे 2 लाख रुपया दे दो, दे दिया। आप उस घर में रह सकते हैं, लेकिन उस घर को अगर आगे अपने किराए पे देकर उसका किराया खाया तो वो सूद होगा। वही जो कल बात हुई कि कुल्लु जर्र नफन, जो कर्जा नफे को खींच ले वो सूद होगा, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरी बात ये है कि अगर ये चीज टूट गई, मुरतहन, फोन टूट गया, चोरी हो गया, तो नुकसान मालिक का होगा, आपका नहीं, क्योंकि आपकी नीयत नहीं थी, आपकी अच्छी कोशिश के बावजूद चीज को नुकसान पहुंच गया। मसलन आप देखिए, किसी ने अपनी भैंस रहन में रखवाई, अब इसका दूध जो इसको इस्तेमाल करे वो पिएगा ना, जरा भैंस का दूध तो नहीं छोड़ना कि उसी में छोड़ दें, ठीक है। उसको चारा भी खिलाएगा, जिस चारे के बदले में दूध है वो दूध पिए खाए, जो मर्जी उसकी चीज है, लेकिन अगर वो भैंस मर गई तो नुकसान मालिक का होगा, ठीक है। फिर उसके बाद बस वो शर्त होती है, मेरा फोन आप लेते हैं और आप कहते हैं कि 10 दिन के अंदर आप वापस दे दें, वरना फिर ये फोन आपका होगा। मिसाल है, कोई ऐसी शर्त करता है कि शर्त रखी जाए कि 10 दिन में ये रकम अगर ना दी तो वो इसका हो जाएगा ये और वो, तो ये किस्म की डील है, फिर वो करना पड़ेगा, यानी ये एक सौदे की बात होती है, इस तरह के मामलात में होंगे। फिर इसके बाद आप देखिए कि अगली चीज क्या है, कि जो बंदा भी ऐसी चीजों में पड़े उसको अल्लाह से बहुत डरना चाहिए। अरब लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन इनका हाफसा बड़ा तेज था, सैकड़ों की तादाद में शेर और नसब नामे तक उनको याद थे। अपना नसब नहीं, ऊँटों का नसब भी याद था और उनके नाम भी उनको याद होते थे। अल्लाह उनको बता रहा कि देखो अन करीब तुम दुनिया की अजीमो शान कौम बनोगे, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, तुम्हारे आपस के मामला इतने वसीह हो जाएंगे कि तुम्हें पढ़ने लिखने की ज़रूरत पेश आएगी, और ऐसे सूरत में फिर तुम अभी से तैयारियां करो, छोटे मामले को बड़ा कर लें। मैंने एक असूल दिया हुआ है अपने लिए भी और साथियों को भी देती हूँ कि देखें कि अगर आप छोटी जगह को साफ नहीं रख सकते तो आप बड़ी को कभी साफ नहीं रखेंगे। एक कमरे का स्कूल था, तब भी यही रूल था हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते नहीं ये जगह छोटी है इसलिए मुश्किल होता है, डिसऑर्गेनाइज है क्योंकि जगह छोटी है। तो मैं उनको कहती थी कि आज तो डिसऑर्गेनाइजेशन दिख रही है, दिखेगी ना कि आपने अलमारियों में घुसा दिया, इधर घुसा दिया, लेकिन जब आपका स्कूल बड़ा हो जाएगा ना तो फिर आपकी ये चीजें दिखेंगी नहीं, लेकिन आपका स्कूल पहले से 10 गुना ज्यादा आपके लिए हैंडल करना मुश्किल होगा। तो जिंदगी का एक असूल इन आयतों से ले लीजिए, सगीरन और कबीरन से, कि जिस चीज को छोटे लेवल पे ठीक कर लेंगे ना तो बड़े लेवल पे वो ठीक होगी। करीब के साथियों की आप इसलाह कर लें, माशाल्लाह मैंने देखा पहले बैच की इसलाह हो जाए ना तो अगलों की उससे ज्यादा खैर निकलती है। और पहले दिन के साथी जो होते हैं वो ढीले ढाले होंगे और उनके असूल और रूल्स टेढ़े होंगे तो आने वालों की तो फिर खैर ही मनाइए कि आप इससे क्या और किस तरह का मामला होगा। फिर इसी तरह आप देखिए कि इन आयतों से एक और बात पता चलती है, आसिमुन कल्बु, के दिल भी गुनाहगार होता है। दिल की बातें तो अब इंशाल्लाह मंडे को होंगी। कल आपको पता आपके साथ क्या हो रहा है, किसी को भी नहीं पता क्यों होना है, अल्लाह को पता। लेकिन कल आपके लिए एक जिसको कहना चाहिए कि अल्लाह ने चाहा तो क्या कहूँ ट्रीट है। जितना अभी तक आप पढ़ चुके हैं उस पूरे की समरी है, सूरह फातिहा से लेके इंशाल्लाह हमारे सूरह जहां तक हम पढ़े मंडे को, इंशाल्लाह हम अपना अगले इस लेसन को करके और फिर ट्यूसडे को अपने साथियों के साथ हम तकमील की खुशी करेंगे और खूबसूरत जज्बों के साथ खुशी के साथ इस कुरान को पढ़ें। जिंदगी रहे ना रहे आप इसको अपनी जिंदगी का ओढ़ना बिछौना बना लें। इंशाल्लाह देखिए ये सूरत हमें यही खबर देती भी जा रही है कि एक जिम्मेदार इंसान बनो। वक्त भी लगाते हो और नतीजा भी कोई नहीं निकलता, फायदा क्या तुम्हें? तो जो वक्त लगाते हैं आपको उसका मिलता है कोई अल्टरनेट? हर एक खुद से पूछे कि मैं यहाँ जो 4.5 घंटे अब लगा के जाती हूँ क्या इज इट वर्थ इट? अल्हम्दुलिल्लाह, तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें और अपने हम दिलों की इसलाह भी करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो ये सारी चीज़ें आएंगी। जज़ाकअल्लाह खैर। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم